نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اور اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہونے کے ناطے سے آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنا تعلق نہ صرف یہ کہ زبانی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں بلکہ ہم اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا وہ کتنا خوبصورت قابل عمل اور حقیقت کے آئینے میں موجود تھا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ لیکچر ہماری اس سال کی سیریز آج کا مسلم کے نام پر، یعنی ہم نے اس کا آغاز کیا تھا محرم سے، محرم کا مہینہ اور آج کا مسلمان، سفر کا مہینہ اور آج کا مسلمان، تو ہمیں اس ٹاپک کے انڈر مختلف چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ آج ہم دین کے نام پر کیا کرتے ہیں، اور ہم نے تقریباً ہر ہی لیکچر کے آغاز میں اس بات کا ہلکا سا ذکر کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب نازل کر دی ہیں۔ یعنی اگر آج کے اس لیکچر کی پہلی بات جو آپ نوٹ کر سکیں تو وہ آپ کا میرا یہ کانفیڈنس کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دوسری بات، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت تھی، ہے اور مستقبل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مبارک اپنے پیارے نبی کی زبان سے نازل کروا دیا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس دین میں اب وسعت کی گنجائش نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی مکمل کیا اور تمہارے لیے پسند بھی اسی دین کو کیا۔ شروع سے لے کر آج تک، یعنی جب سے اسلام شروع ہوا ہے تب سے لے کر، ساری امت اس بات پر متفق ہے، یعنی دے آر ایگریڈ اپون کس چیز پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا تھا، کوئی بات چھپائی نہیں اور نہ اپنی مرضی سے کچھ کہا۔ سورۃ نجم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی چھپاتے نہیں تھے، جو کہہ دیا گیا اس کو کرتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیزیں بتائی ہیں اس کا تعلق کسی خاص مذہبی گروہ سے نہیں ہے کہ چند دیندار، چند معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ تو وہ کام کر لیں اور وہ جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کر لیں اور باقی سب پیچھے رہیں۔ یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین مبارک ہمیں ملا ہے وہ کس طرح کا ملا ہے کہ جو خاص اور عام ہر بندے کے لیے سراسر قابل عمل ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں یہ کر سکتے ہیں، یہ تو بس چند لوگوں کا کام ہے۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا کہ دین آسان ہے، الدین یسر، اور دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا۔ اللہ نے جو کہہ دیا، نبی نے کر کے دکھا دیا یا کہہ کے بتا دیا، یہ دو چیزیں ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ اگر آپ اور میں اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو یاد رکھیے کہ بہت ساری غلط فہمیوں کا سامنا کریں گے۔ تو رجب کا مہینہ اصل میں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس سے پیچھے کا مہینہ کیا ہے، سب بولیے، ربیع الثانی۔ اس سے اگلا مہینہ کون سا، شعبان کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی جو وجوہات ہیں، اسلام میں اس کا مقام ہے، یہ حرمت کے ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ذیقعد، ذی‌الحج اور محرم تین مسلسل مہینے آتے ہیں، اور رجب کا مہینہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ آتا ہے۔ اس کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ لفظ رجب کیا ہے، را جیم با روٹ ہے اس کا، اور رجب کا معنی ہوتا ہے تعظیم۔ तो रजब का लफ्जी माना अगर आप देखें तो ताजीम वाला महीना। नबी सल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कि साल 12 महीनों का होता है और इसमें से 4 हुरमत वाले हैं, 3 मुसलसल, ज़ीक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, और रजब जो है वो जमादुल आखिर और शाबान के बीच में आता है। ठीक है, अरब लोग इस महीने की बहुत ताज़ीम करते थे, इसको रजबुल मुज़र भी कहते हैं। मुज़र कबीला था एक अरबों का, दौरे जाहिलियत में उन्होंने रजब के महीने की हुरमत का एहतमाम किया था, इसीलिए उनको रखा था। थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड पे देखें ना, तो 3 मुसलसल महीने पीछे गुजरे, कौन से हुरमत वाले। अब जब मुसलसल हुरमत वाले महीने गुजरते थे तो लोग जिनको लड़ने फिरने की आदत थी, जिनका बाज़ दफ़ा मुआश का जरिया ही लूटमार होती थी, तो वो बहुत ही परेशान हो जाते थे कि कब हमारे ये महीने ख़त्म हों तो हम दूसरी तरफ चल पड़े। लेकिन जब रजब का महीना आता था तो बाज़ जाहली अरब जो थे वो ये तक कहते थे कि रजब मनिस्सिलुस सना, यानी रजब वो है जो तेज़ हथियारों को उतार दे। क्या मतलब ये था कि अब लड़ भिड़ चुके हैं, अब इस एक महीने में फिर खामोशी से बैठेंगे। और अरब लोग भी इस महीने की हुरमत का एहतमाम करते थे, बुतों के नाम पर कुर्बानियां देते थे। इस्लाम ने इस महीने में किसी भी अलग से कुर्बानी, नमाज और किसी रोज़े का अलग से तذکرہ नहीं किया, यानी हुरमत के महीनों में से एक महीना। चलिए मैं और आप चंद लम्हों के लिए सोचते हैं, क्या आज हम मुसलमानों को इसके बारे में बताएं, यानी रजब का महीना है। अगर आज की डेट हम देखें, आप सबके पास भी आपके टेलीफोन्स के ऊपर डेट्स लिखी आती हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह क्या डेट है बताइए, जमादिसानी की 26 तारीख है। चंद दिन में, 4 या 5 दिन में रजब का महीना आने वाला है। पहला अमल तो अपने लिए ये लिखिए कि हमें पता चल गया आज से ही, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त से पहले ही इस चीज़ को पा लिया कि अब अगला महीना हुरमत का महीना है, जिसमें सगे बाप के कातिल को भी छोड़ देते थे, तलवारों की जद में आए हुए को छोड़ देते थे अगर उनको कोई कहता कि हुरमत वाले महीने का चांद दिख गया। आप सवाल कर सकते हैं कि क्यों है हुरमत वाला महीना, या अल्लाह ताला ने ये क्यों किया, किसी को किया, 3 कर दिए फिर 1 छोड़ दिया वो। तो पहली बात है कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कर सकता है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। उसने हर चीज़ में से दूसरी चीज़ों को चुना है, फलों में से एक फल अहम है, शहरों में एक शहर अहम है, नबियों में तिलका रसूल कद फद्दलना बादहुम अला बादिन, तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें मेरे आपकी कोई बात नहीं। और ये भी बात हम पिछले हर महीने के लेक्चर के शुरू में ऑलमोस्ट कर चुके हैं कि महीनों की गिनती जो 12 है ये शुरू से है, ज़मीनों आसमान के बनने से, पैदा होने से पहले से ये सब कुछ मौजूद है। तो अल्लाह ताला की सुन्नत थी कि उसने इसमें एक इम्तिहान लिया, लेकिन इसकी और बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने मैंने जिस शऊर के साथ अब अगले इंशाल्लाह 4 दिन के बाद तो कुछ और भी शऊर आ जाएगा हमें, और वो क्या होगा कि हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब इसका ये नहीं मतलब कि इन 4 दिनों में खूब झगड़ लें, लेकिन जिसने वाकई झगड़ना है और जिसका बड़ा ही दिल चाहता है झगड़े करने को, वो कर लें। बहन भाइयों की लड़ाइयाँ कर लीजिए, शौहर बीवी से लड़ना है लड़ लें जाके घर, आज खूब लड़ाई करें, बेगम आपको क्या हो गया, कहना 4 दिन बाद पाबंदी लग जानी है, मैंने पूरा महीना लड़ नहीं सकना इसलिए मैं आपसे भी लड़ लेती हूँ, करना चाहते हैं ऐसा, कर लें, शौक पूरा कर लें, लेकिन शर्त यह है कि आपने पूरा महीना नहीं लड़ना। बात समझ गए, तो इस तरह की कोई चीज़। फिर आप देखिए कि ए हुरमत का महीना तो सिर्फ जान की हुरमत नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे कि आज का दिन और आज का महीना आज की जगह। और ये कहाँ खड़े होकर ये बात कही गई थी, यौमुल अरफा में हज्जतुल विदा के मौके पे। तो क्या मैं और आप किसी की जान नहीं ले सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, तो क्या उसका माल, उसकी इज्जत ले सकते हैं? तो आप और मैं, रियली बिलीव मी, अगर हम वाकई, हम नहीं बल्कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ ना, तो आज से मुझे अपनी इस्लाह का ये लाहे अमल अपनाना होगा कि मैंने इस पूरे महीने में, जान तो हम नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना हमें इसकी भी तौफीक दे कि हम कत्लो गरत करी पे आ जाएं, लेकिन गीबत करते हैं। और गीबत क्या है, किसी की इज्जत की धज्जी है, किसी को लेट डाउन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तंज करते हैं, ताना देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, हम किसी के बारे में बदगुमान होते हैं, तजस्सुस करते हैं। आप सिर्फ इस एक लफ्ज़ की ज़िमन में देख लीजिए कि मैंने किसी की जान की भी हुरमत करनी है तो मैंने उसकी इज्जत की भी हुरमत करनी है, मैंने दूसरों के ऐप छुपाने हैं, मैंने दूसरों की बुराइयों के ऊपर पर्दे डालने हैं, इंशाल्लाह ताला जब नियत करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ हुरमत का महीना है। अब वो लोग क्या करते थे और आज का मुसलमान क्या करता है, हम थोड़ा सा तरतीब से देखते जाते हैं। यानी पहले आपको एक बुनियादी कुलिया समझ आ गया है कि ये हुरमत का महीना है, इसके अलावा ना तो इस महीने में कोई एक्स्ट्रा नमाज है ना इसमें एक्स्ट्रा रोजे हैं, जैसा कि किसी एक महीने में पीछे थे। कोई बताएगा आप में से किस महीने में 2 रोजे रखने चाहिए? मुहर्रम, शाबाश, 9 और 10 को हैं। और किसी महीने के 10 दिन अहम थे कौन से हैं? जरा टेस्ट तो दे दें। शाबाश, जिलहज के शुरू के 10 दिन थे, है ना? छुपाने की क्या बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। तो जिस महीने के साथ कुछ है वो हम जरूर देखेंगे, जिसमें नहीं है उसमें नहीं देखेंगे। लेकिन क्या आज यानी मुसलमान जो कुछ काम करते हैं क्या वो दूसरे लोग भी करते थे और हम करते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि मुसलमानों में से कुछ लोग इस महीने क्या कुछ करते हैं। और फिर इसके बाद मैं कुछ आपको मक्का वालों से निस्बत जुड़ती हुई भी बता दूंगी। कुछ लोग इस महीने में एक नमाज पढ़ते हैं जिसको सलातुर रगाइद कहते हैं। आपको चंद स्लाइड्स भी दिखा सकते हैं एंड पे इंशाल्लाह ताला, और किताबों में और अखबारों के आर्टिकल्स में आपको आजकल बहुत कुछ मिलेगा। और वो सलातुर रगाइद का जब मैंने खुद तरीका पढ़ा तो मैं ये सोच में पड़ गई कि इसको पढ़ते हुए मेमोरी का कितना बड़ा टेस्ट है। 4 नफिल हैं जिसके पहले 2 रकतों में पहले शायद सूरत कुल हुल्ला के बाद 13 दफ़ा कुल हुल्ला पढ़नी है, फिर सूरत कुरैश पढ़नी है, फिर दूसरी रकत में, यानी ठीक ठाक इम्तिहान है। तो शुरू में हमने देखा कि अद्दीन युसर, ये जो चीज़ है ना, ये इंसान को अपनी तरफ से खुद, मैं और आप ये लोग अपने तौर पे ये कह दें कि ये हम कर लेंगे तो हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। हमें वही काम करना है जिसके करने का हमें हुक्म दिया गया। तो कोई ऐसी नमाज, आप कहते हैं लोग तो पढ़ते हैं और दीन वाले ही बताते हैं, तो लिख लीजिए। मैं आपको बहुत प्यार से मोहब्बत से कहूंगी, किसी दीनदार का ना मजाक करें, ना आप उसके ऊपर बदगुमान हो, ना उनकी बेइज्जती समझें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसको जितनी बात पहुंची, जो जिसका सोर्स ऑफ नॉलेज था, उस बेचारे ने बड़ी मोहब्बत से बड़े अच्छे तरीके से लोगों को बताना शुरू कर दिया। देखिए, दिल के अंदर नेकियां करने की तलब और तड़प हर बंदे के अंदर है। जब हर बंदे के अंदर मौजूद है तो फिर वो करने की कोशिश भी करता है। अब अगर वो कोई कर रहा है तो क्या आप उसको बुरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। सिर्फ एक चीज है, अब आप क्या, अच्छा हम जाते हैं उनके सामने ये बातें रख देते हैं, आपकी मेरी कौन सुनेगा? बस समझ गए, मेरा आपका काम के सबसे पहली बात जो मुझे और आपको करनी है वो क्या है? अपनी इस्लाह, अपने अकायद को देखें। देखिए, हम शुरू से माशाल्लाह खाना पकाना आता है हमें, लेकिन आहिस्ते से वक्त के साथ देख रहे हैं मैयर करके पकाओ, कैलोरीज वाला खाना पकाओ, और जी ये डालो ये ना डालो, ये 2 चीज़ें इकट्ठी डालें तो ख़राब हो जाता है, करते हैं ना। क्या मैंने और आपने अपनी पुरानी कुकिंग, जो हमारा कुकिंग का तरीकाकार था, उसको अभी तक देखा हुआ? नहीं, दिन ब दिन चेंज हो रहा है। पहले दौर में माएँ कपड़े सीती थी तो ऐसे बालिश्तों से नाप नाप के सीती थी, फिर ऐसे ऐसे बच्चियों ने जब सेविंग कोर्सेज किए, स्टिचिंग सीखी, आर्ट्स कॉलेजेस में गई तो इंचेस टेप और सारे ग्राफ्स और सारे ड्राफ्ट्स बना के सीखे ना, कोई बुरी बात है? माँ को कह दे कि चूंकि आप बालिश्तों से नापती थी तो अब मैं तो ये कर ही नहीं सकती। तो हमेशा याद रखे, वक्त के साथ इल्म एडवांस होता है। दुनियावी लूम देख लीजिए, कहाँ कंप्यूटर्स आगे। आपके बच्चों को कंप्यूटर बहुत आसान लगता है लेकिन आपको मुश्किल लग सकता है, ऐसे ही है ना। तो लिहाजा दीन में इजाफा तो नहीं मुमकिन, लेकिन एक चीज जिसको मैं कोशिश कर रही हूं कि हर महीने आपसे जरूर रखूं, ताकि कम से कम अगर आप 1 साल के ये लेक्चर सुन चुके हो तो इसके बाद फिर आपका भी तो दिल चाहे ना कि हम भी तो जरा सा इल्म की तरफ जाके देखें। होता यह है कि जिस तरह से अब दुनिया में अल्लाह के हुक्म से सहूलतें बढ़ती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, देखिए प्रेस का वक्त आ गया, मीडिया का आ गया, सोशल मीडिया का टाइम आ गया, पीडीएफ्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, इल्म बड़ी खूबसूरत शक्लों में सामने आ गया। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देती हूँ, सिर्फ आज से 5 साल पीछे अगर आपको बुखारी में कुछ देखना होता था तो आपको अपने साइड पर रखी हुई 7 जिल्दों की इतनी मोटी बुखारी खोल के उसमें सफा नंबर ढूंढे, दिस एंड दैट करें, फिर मुझे मिल सकती थी। आप में से कोई कहता है मुझे कोई हदीस है, मैं कहती है बुखारी में किधर लाए, मुझे हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट लग जाते फिर भी ना मिलती। हर हदीस का नंबर पेज का तो नहीं याद होगा ना। आज कोई किसी को कहता है बुखारी में ये बात कहां लगी, आई गिव मी 1 सेकंड या 1 मिनट, विद इन 1 मिनट आई कैन सर्च, मैं उस हदीस का थोड़ा सा लफ्ज डालूंगी तो उसके कितने पॉपअप्स मेरे पास आ जाएंगे। अब हुआ क्या, इल्म हासिल करना आसान हो गया, रिसर्च करना आसान हो गया, पहले दौर में जब दीन पाइल अप हुआ हमारे खास सरपिंडो पाके, या मैं एक बहुत ही प्यार और मोहब्बत और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ ये बात भी बोल दूं कि ज्यादातर दीन में जो तब्दीलियां या दीन की जो मॉडिफाइड शक्लें हैं ना, वो बरेसगीर और पाको हिंद में हुई हैं। अरबों में ये कुछ नहीं होगा। वजह क्या है? बहुत सिंपल बात है, आपको मुझे एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि अरब लोगों में से जब उन्होंने दीन को देखा तो डायरेक्ट सोर्सेज में मौजूद था, पहले दिन भी था और आज भी है। हम पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी तीन लोग जो उर्दू स्पीकिंग है मोस्ट लाइकली, इन्होंने जब कोई भी इल्म लेना चाहा तो उनका सोर्स क्या था? सिर्फ ट्रांसलेटेड उर्दू मवाद। ऐसे ही है ना, जिन किताबों का, हदीसों का, जिन कुरान की तफासीर का उर्दू में तर्जमा हो गया, हमने बस उसको देख के समझा कि यही कुछ है। सीधी सी बात है। अब वो उर्दू की लिमिटेड तफसीरें, लिमिटेड बुक्स जो हमारे पास रही आज से 100-200 साल से, पूरा कल्चर उसी पे चल रहा है। बात समझ गए? अब क्या हुआ, वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आगे 10 तफसीरें थी, अब 100 हैं, 200 तफसीरें भी उर्दू में हैं, और आपको पता है कि अभी हो सकता है 2000 तफसीरें पीछे पड़ी हुई हैं। आप कहेंगे इतनी तफसीरें हैं कुरान की? जी, आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज वेस्ट ने टाइटल दे दिया है कि ये वो शख्स है कि जिसके बोले हुए लफ्जों को सबसे ज्यादा लिखा गया। साइंसेस ऑफ हदीस को आज भी वो मुकाम दे दिया गया कि जो आज भी माइक्रोबायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री और जूलॉजी, इस पे इतनी रिसर्च नहीं हुई जितनी अल्लाह के नबी के बातों पे हुई है। करने वाले मौजूद हैं, चाहने वाले मौजूद हैं। तो वक्त के साथ अहदीस खुल के आई, फिर एक ऐसा दौर गुजरा मुस्लिम हिस्ट्री में, कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही, और अब ये सीरीज तो इस साल पूरी हो ही जाएगी मुहर्रम तक, तो फिर अगले साल की सीरीज में हम कोई ऐसी भी चीज शुरू कर सकते हैं हर महीने हम एक लेक्चर में देखें कि हमारे असलाफ ने दीन को कैसे हमारे तक पहुंचाया। तो आप हैरान होंगे, हैरत आपकी गुम हो जाएगी कि इल्म के लिए तहकीक करना ये मुसलमानों का शौर था। राहिला तो फिल इल्म कहते हैं, इल्म के लिए सफर हासिल करना। ये जो 18th century, 19th century और अब खुशकिस्मती से आप कह लें कि 20th century जिसमें आज मैं और आप है ना, ये इल्म दो सेंचुरियां नहीं है। आज हम देखें ना, ये दीन के इल्म की क्या शान है। आज कितने लोगों में तलब और तड़प है कि हम दीन का इल्म सीखें। और अगर आज मिसाल है कि अगले हफ्ते 10 दिन बाद रजब के कुंडों के नाम पे देखिएगा दावतें, मिलाद के नाम पे रबीउल अव्वल की दावतें, शबे बरात में देखिएगा शबे बरात के खाने पीने, तो क्या गैदरिंग्स का रुख होता है। मैं सबकी साइड ले रही हूँ जो ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड बन चुके हैं। आज ट्रेंड यह है कि रजब आए तो कुंडे भर लेंगे, 27 रजब को मिराज शरीफ कर लेंगे, पहले जुमे को सलातो रगायत कर लेंगे, कुछ कुर्बानियां करेंगे, और सबसे बढ़ के उमरा कर लेंगे। यानी रजब के साथ तो आजकल इतना कुछ हम मुसलमानों ने जोड़ा हुआ है। चले शाबान आएगा तो शाबान में हम 15 शाबान की रात जागेंगे, सारी रात रोएंगे धोएंगे इबादत कर लेंगे, रमजान आएगा रोजा रख लेंगे, और खास तौर पर 27वीं रात को हम जागेंगे और सारी रात जाग कर इबादत करेंगे। आप हैरान होंगे इस बात पे कि मुसलमानों में जिस तरीके से शॉर्टकट का दीन पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग लोगों के पास है, पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में नहीं। अभी इसमें वाक्यात में एक वाक्य आएगा तो मैं आपको चंद बातें नोट कराऊंगी। तो आप हैरान होंगे कि अरब लोग, उलमा, फजला, मुहद्दसीन और हिस्ट्री लिखने वाले, अहले सीर, सीरत लिखने वाले कह रहे हैं कि 10 मुख्तलिफ कौल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया मेराज कब हुआ। 10 कौल है और 10 की बुनियादें मौजूद हैं, और साल के अंदर भी कौल है और किस तारीख को हुआ इसमें भी। कोई कहता है नबी सल्लम की नबूवत के फौरन अगले साल हुआ, कोई कहता है हिजरत मदीना से 1 साल पहले हुआ, कोई कहता है 2 साल पहले हुआ, कोई कहता है 3 साल पहले हुआ, कोई कहता है मक्की साल के। अब सिर्फ सालों में इख्तलाफ दूर करें तो फिर तारीखों का इख्तलाफ है। कोई कहता है रमजान था, कोई कहता है जिलहज था, कोई कहता है ज़िकात था, कोई कहता है, और उसमें एक कौल जो है वो ये रजब का भी मौजूद है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सवाल पैदा होता है कि सिर्फ हम पाकिस्तानियों को जिब्राइल ने आके तो नहीं कह दिया कि बस 27 रजब है और 27वीं रात है, ताकि हम बस उसे एक रात को मनाएं। तो ये शॉर्टेज ऑफ नॉलेज है। एक बात लिख लें, थोड़ा इल्म जो होता है ना, बहुत थोड़ा इल्म जो होता है, ये स्टबन होता है, बंदा बहुत रिजिड होता है। जैसे नया कपड़ा पहने ना, चुभता है लेकिन अच्छा बड़ा लग रहा होता है। अकड़ बड़ी होती है नए इल्म की। जितना आप ज्यादा इल्म लेते जाएंगे ना, आप सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, दूसरों को बर्दाश्त करने वाले, टॉलरेंट होंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हलाल नहीं है, हराम का मसला नहीं, कोई बात नहीं, कोई इबादत कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कोई सूद तो नहीं खा रहा, कोई शराब तो नहीं पी रहा, यानी आप हराम हलाल पे नहीं करते कॉम्प्रोमाइज, लेकिन बाकी चीज़ों में आप बहुत रिलैक्सेंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि इल्म जब भी मिले ना तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, उस महीने से, आप ये कह लीजिए कि जब इस्लाम आया, अब आप जरा सा वहां वापस आ जाइए, जहां इस्लाम आया वहां क्या हो रहा था? जब रजब का महीना आता था तो मुशरिकीन मक्का जो थे वो कुर्बानी करते थे। कुछ लोगों ने दौरे जाहिलियत से एक रस्म बनाई हुई थी, अतीरा, आइन ता या रा के नाम पर एक कुर्बानी महीने में देते थे एक बकरी की, और जिस बकरी को ज़िबा करते थे ना उसकी खाल दरख्त पर लगा देते थे, और इस कुर्बानी को क्या कहते थे? रजबिया, रजब में की कुर्बानी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा से, ला फरा वला अतीरतन, फरा और अतीरा कुछ नहीं है। ये फरा क्या है? किसी ऊंटनी का पहला बच्चा, पहलोटी का, जिसको आप बच्चा कहते हैं ना, उसको जाकर अपने बुतों के नाम पे भेंट चढ़ा के ज़िबा कर देते थे, इसको फरा कहते थे। आपने मना कर दिया, इजाजत ही नहीं दी। अब आप देखिए ये हदीस बुखारी में मौजूद है, ला फरा वला अतीरा था। अब आज कोई इस नाम पे कुर्बानी करे, चलो क्या पता फायदा हो ही जाए, तो ये किसकी सुन्नत होगी? ये मक्का वालों की सुन्नत होगी, ये नबी सल्लम के लाए हुए दीन की सुन्नत नहीं होगी। फिर इसी तरह जो सलातुर रगायब, दूसरी जो मुसलमान आज भी देखिए पढ़ते हैं, रजब के पहले जुमे की रात 12 रकत 6 सलामों से पढ़ते हैं, यानी दो दो रकत पढ़ के सलाम फेरते थे, सूरत इखलास पढ़ते हैं, उसके बाद हर रकत में तीन तीन मरतबा सूरतुल कदर पढ़ते हैं, और ये बिदअत चौथी सदी से शुरू हुई जिसकी कोई असलियत नहीं है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं तमाम स्कॉलर्स, ऑल स्कॉलर, यानी उलमा का इजमा है इस पर कि ये नमाज या इसकी रिवायात मौजू, यानी मन घड़त है, फैब्रिकेटेड है। अभी शुरू में आप में से कोई कह रहा था ना कि फिर वो भी तो हदीसें ही बयान करते हैं ना, क्या करें? तो याद रखिए एक जनरल रूल है, बल्कि ये भी मुझे लगता है कि इमाम इब्ने कय्यम या इब्ने तैमिया में से किसी का कॉल है, कहते हैं कि मुसलमानों एक मेयार रख लो दिल में, जब किसी अमल के करने पे तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फजाइल, ये कर लो पहली रकत पे इतना सवाब, दूसरी पे इतना अजर, तीसरी पे इतना, जब तुम्हें बहुत ज्यादा किसी अमल की ये फजीलतें बताई जाएं तो वो मौजू रिवायत होगी। मिसाल छोटी सी देती हैं, आप देखिए कि कुरान पाक में एक रात का तस्करा, क्या लैलतुल कदर, क्या कहा उसके बारे में कुरान में? खैरु मिन अल्फी शहर, 1000 महीनों से वो रात बेहतर है। कुरान ने कह दिया ना, तो ये मैं आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर अब कोई एक रात को 1000 रातों से ज्यादा, कोई कहता है फला अमल कर लो तो 2000 रातों के ज्यादा से ज्यादा जागने का सवाब है, तो मान जाओ कि ये मौजू रिवायत होगी। क्यों? कि कुरान ने तो उस लैलतुल कदर को 1000 रातों से ताबीर किया है, तो अगर उससे कोई बड़ी चीज होती तो क्या अल्लाह ताला उसका तस्करा ना करते? क्लियर है बात? बात जहन में रखिए। देखिए ये प्यार की बातें हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उम्मत के उस गिल्ट को दूर करने की बातें हैं। मैं अपने दिल में रियली ऐसे लोगों के दर्द महसूस करती हूँ। जज्बे तो हैं कुछ करने के, लेकिन उसका इनेकास नहीं हो रहा, फिर वो खुद किसी ना किसी तरह आते हैं, और जिम्मेदारी है अहले इल्म पर। किसी का एक सवाल सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जब ये आप सही हदीस और मौजू हदीस का जिक्र करते हैं तो हम ऐसी मस्जिदों और ऐसे इदारों और ऐसी जगहों में जहां से मतलब रग़बत दिलाई जाती है कि आप इन दिनों में और इन महीनों में फलां इबादत करें, तो वो नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि ये बातें नहीं करनी चाहिए ऐसी, क्यों? इससे उम्मत में इख्तलाफ पड़ता है। यानी हमें पता है कि ये हदीसें ज़ईफ हैं अब, लेकिन चूंकि अब लोग शुरू से ये करते आ रहे थे तो फिर इख्तलाफ क्यों करो? मिसाल देखिए ना कि अब आप अपने घर पे लीजिए कि आप आज यहाँ आ गई, हो सकता है आपकी देवरानी, जेठानी, आपकी सास, आपके घर के इर्द गिर्द के लोग रजब में ये सब कुछ करते हो जो आज आप सुन रही हैं, तो जाहरी बात है कि आप सुन के चुप नहीं रहेंगी। अब आप जब उनसे बात करेंगी तो वो कहेंगे, लोग बहू तुम नया दीन लेकर आ गई, भाभी आप क्या बात कर रही हैं, अब चुप कर जो ना, अम्मा के वक्त से ये हो रहा था, कुंडे भर रहे थे, अब तुम कहाँ से आ गई, होगा ना? तो अब इख्तलाफ तो होगा। तो अब ये सवाल है कि फिर इख्तलाफ ना डालें उम्मत में, तो मैं इसका एक बड़ा पुरदर जवाब दूंगी कि ये इख्तलाफ के डर से उम्मत को आज हमने जाहिल रख दिया। आज उम्मत को इन इख्तलाफों के खौफ से हमने बे इल्म रखा हुआ है। دیکھیے حق کا اختلاف باطل کے ساتھ شروع سے رہا, فرام دا ڈے ون, پہلے دن سے یہ اختلاف رہا جب سے حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ لوگوں تم میری بات مان جاؤ اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اس دن سے لوگوں نے جھگڑے کیے. قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ یا نوح قد جادلتنا, اے نوح تم سے بڑے ہی جھگڑتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ دین والے بڑے جھگڑتے ہیں, یہ لڑاکے ہیں, یہ لڑائیاں ڈالتے ہیں. مثال دیتی ہیں, ایک چھوٹی سی شاید بات سمجھ آئے, حالانکہ ہماری بات تھوڑی سی دوسری طرف جا رہی ہے لیکن پھر بھی اہم ہے کیونکہ اب آپ کو سب کو یہ باتیں سننے کے بعد سوال ذہنوں میں آنے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک معاشرہ ہے, آپ کسی بھی گلی محلے کا تصور میں لائیے کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ پانی کی پائپیں ہیں وہ گٹر کی پائپوں سے مل رہی ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ گٹر کا سیوریج جو ہے اس کا پانی آپ کے ڈرنکنگ واٹر میں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی بھی میکینیکل انجینئر یا کسی سے یہ بات پتہ چل گئی, اب ظاہر ہے کہ جیوری بیٹھی کریں کیا. اچھا کچھ کہتے ہیں کہ بھئی فوراً ایک میسج پوری کمیونٹی میں بھیجو کہ آپ کے لیے 8 دن کے لیے پانی بند کیا جا رہا ہے, آپ کو جتنا پانی بھرنا ہے بھر لیں اور اس طرح سے کچھ دن تک یہ پائپوں کی ریپیئر ہوگی اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر انشاءاللہ آپ کو صاف پانی ملے گا. اب یہ میسج جب جاتا ہے تو اس کے بعد کمیونٹی میں 2-3 ڈفرنٹ طبقے بن جاتے ہیں. کچھ کیا کہیں گے, الحمدللہ کتنے بڑے محسن ہیں ہمارے کہ جنہوں نے ہمیں گٹر کے پانی کے پینے سے بچا لیا, بیماریاں ہوں گی, پیٹ کے درد شروع ہوں گے, پتہ نہیں کینسر تک نہ پہنچ جائے. وہ کہیں گے کوئی بات نہیں, 8 دن کی کیا بات ہے, ہم کہیں چلے ہی جائیں گے, آپ اس کو ٹھیک کیجیے. پہلا طبقہ یہ ہوگا نا. دوسرا طبقہ ہے وہ کیا کہے گا, سارا شہر کھج جائے گا, کتنی روڈز ٹوٹیں گی, پھر دیر ہوگی, یہ ہے, چپ کرو, جو کوئی پی رہا ہے وہ پیتا رہے, خاموش رہو. تو کوئی صاحب درد کہے گا کہ یہ جو لوگ بیمار ہو جائیں گے گندا پانی پی کے, تو وہ کہتے چپ کر جاؤ نا, نہ بتاؤ, مجھے بتائیے. چلے سارے گروپس کو چھوڑ دیں, ان دو میں سے کون زیادہ عقل مندی کی بات کر رہا ہے, پہلا کہ دوسرا؟ اور کیا وہ جھگڑا اور اختلاف پسندیدہ نہیں ہے کہ جس کے بعد لوگوں کو صحت مل جائے اور وہ ہمیشہ اور پیس میکر اور پیس 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 اور لو 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 اینڈ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن والے لوگ جو اندر سے لوگوں کو بیمار پانی پلا رہے ہیں, بیماریاں والا پانی پلا رہے ہیں, کیا وہ انسانیت کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ تو جب نیا نیا دین کسی سوسائٹی میں آئے گا, جس کو میں کہتی ہوں اب بھی آ رہا ہے, یہ جو 2000 کی سینچری شروع ہوئی, 19th century کا اینڈ ہے, الحمدللہ یہ ریوائول آف اسلام ہے, یہ نشاط ثانیہ ہے اسلام کی. اب اللہ نے دوبارہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت محسوس کروا دی ہے کہ تمہیں علم کا پانی چاہیے اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سچے دین پہ چلنا ہے. تو یہ جو اس وقت فرکشن ہے گھروں میں یا خاندانوں میں, یہ مبارک کے قابل ہے. کیوں؟ آج آپ کو سمجھ آئی, آپ کا عمل بدلے گا, دوسرے کو پتا چلے گا, تیسرے 10 سال بعد دیکھے گا پورے خاندان میں بات سمجھ آ گئی ہوگی. طریقہ یہ کہ آپ حکمت سے بات کریں, آپ اگریسو نہ ہوں, آپ بدتمیزی نہ کریں, آپ فتوے نہ دیں کفر کے, آپ وہ کام ان کے ساتھ نہ بھی کریں لیکن آپ ان کے ساتھ اس چیز میں لگے رہیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اچھا اخلاق ان کو بتائے گا. اور میں کہتی ہوں کسی کو نہیں بدل سکتا کوئی, ایک تو اللہ کی قدرت ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, دعائیں کیا کریں, اور دوسری چیز اگر کسی کو کوئی بدل سکتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سورس سے علم کا حاصل کرنا, دیٹس اٹ. آپ کو جس علم نے بدلا آپ اس علم سے جوڑ دیں. آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تم یہ کر لو, تم وہ کر لو, ویسے میں نے سنا, اللہ کی قسم کلاس میں سن کے آئی ہوں, میں نے کیسٹ میں سنا, میں نے ریکارڈنگ میں سنا, کہیں گے چپ کر جاؤ. آپ یہ سارا کہنے کے بجائے ان کو ڈائریکٹ وہ چیز دے دیں سننے کو, اور حق میں اتنی ٹریکشن ہے, کشش ہے کہ انسان کی روح اس کو تڑپ کر کے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا علم کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے اور دل کھلا رکھیں. آپ کے بچے آپ سے زیادہ کمپیوٹر جانتے ہیں تو آپ اس کو ریئلائز کر چکے ہیں, کریں کہ آپ ان سے سیکھ لیں. ہاں بیٹا چلو آج مجھے سکھاؤ ماؤس کیسے پکڑتے ہیں, اچھا آج سکھاؤ کہ ای میل کیسے کھولتے ہیں, آج مجھے یہ سنو. بس ایک سال کے بعد آپ کو اپنے بچے جتنا علم آ چکا ہوگا, اور اس میں کوئی جھگڑے اور لڑائی کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک جنرل رول تھا, واپس آ جائیے رجب کے کاموں میں.